पृष्ठ संख्या 32। आगे चलकर हम जब आत्म साक्षात्कार के गीतों पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि उनकी आत्म संताप की अनुभूति के इतने प्रखर होने का कारण भी उनका यही सहज स्वीकार है। इसी स्वीकार से वह निष्कामता, निरामयता और अंततः शरणागत की ओर बढ़ते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि निराला अपनी कविता के द्वारा ही मुक्त हुए हैं। सारी बाहरी पराजय, सारे दुख, सारी दुर्घटनाएं और सारे दुखांत उनकी कविता में आकर तिरोहित हो जाते हैं। रचना किस तरह मनुष्य को मुक्त कर सकती है? निराला और रविंद्रनाथ से बढ़कर आधुनिक युग में इसका दूसरा कोई बड़ा उदाहरण मिल सकना असंभव है। रविंद्रनाथ की मुक्ति तो फिर भी इखरी है, क्योंकि उन्हें बाहरी पराजयों और दुखांतों का अधिकांशतः सामना नहीं करना पड़ा। रविंद्रनाथ की मुक्ति में गरिमा खोने की स्थिति की कोई संभावना नहीं थी, निराला में थी। लेकिन फिर भी निराला ने इस गरिमा को खोया नहीं है। कवि धर्म ही मानव धर्म है। रविंद्रनाथ का यह कथन अथवा वैराग्य साधने अमार मुक्ति नए रविंद्रनाथ से अधिक निराला पर लागू होता है। रविंद्रनाथ के सामने तो फिर भी कवि धर्म के निर्वाह की सभी सुविधाएं प्राप्त थी। वैराग्य और कविता के अलावा शिक्षा, समाज सेवा जैसे आत्ममुक्ति के अनेक साधन रविंद्रनाथ ने आजमाए और उसमें सफल भी हुए। निराला के पास ना तो इस तरह की सुविधाएं थी और ना ही आत्ममुक्ति के लिए उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ही सोचा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कविता के द्वारा आत्ममुक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण आधुनिक युग में निराला के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलता। अपने इन प्रेम गीतों में निराला की मानसिकता का एक सूक्ष्म विकास परिलक्षित होता है। उसे हम यों दिखा सकते हैं, आह्लाद, तन्मयता, गहरा अनुभूत सुख, आत्मतोष, उच्छ्वल, पवित्रता, आशीष, निष्कामता और आत्ममुक्ति। इस क्रम को थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन अक्सर गीतों के रचनात्मक गठन में भी इस क्रम को अनुसयुत किया गया है। अक्सर उनके प्रेम गीत आह्लाद के अनहोनेपन से शुरू होते हैं। यह आह्लाद कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व को एक गहरी तन्मयता से भर देता है। यही तन्मयता एक गहरे सुख में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। यहाँ से आगे निराला के प्रेम गीतों का संवेदनात्मक विकास आश्चर्य में अधिक डालता है। पृष्ठ संख्या 33। यहीं पर आकर समाप्त होने या भटकने की गुंजाइश है। यहीं पर आकर अधिकांश आधुनिक गीतकार या तो अपने गीतों को समाप्त कर देते हैं या इस सुखानुभूति को ही संवेदना के संपूर्ण लयात्मक तनाव का अंत मान बैठते हैं। निराला के लिए यह सुखानुभूति उनकी गीत संवेदना के लयपूर्ण झनकार का केवल मध्य भाग है। जो गीतकार अपनी कविता को यहाँ खत्म कर बैठते हैं, उन पर मांसलता के गीतकार होने का आरोप लगाया जा सकता है। सुखानुभूति तक लाकर छोड़ देने की यही स्थिति अंततः इस तरह के सारे गीतकारों को उस तरह की गीत संवेदना के निकट लाकर खड़ा कर देती है, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिक सेंसिबिलिटी कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो निराला रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी गीतकार नहीं ठहरते। सुखानुभूति उनकी गीत संवेदना का केवल मध्य भाग है, यानी कि उसके बाद ही कथ्य का वह महत्वपूर्ण अंश आता है जिस तक निराला अपनी गीत रचना से पहुंचना चाहते हैं। इसी सुखानुभूति से गरिमामय आत्मतोष की अभिव्यक्ति जागती है। यह आत्मतोष रोमांटिक काव्यधारा की उस अपराध चेतना या पश्चाताप अथवा आत्मस्वीकार से सर्वथा दूसरी दिशा की वस्तु है। निराला की आत्मस्वीकृत पश्चिम की अपराध चेतना से उपजी हुई आत्मस्वीकृति से पृथक है। इसीलिए उनके गीतों में अभिव्यक्ति यह आत्मतोष उच्छल पवित्रता से मंडित है। उसमें पश्चाताप की अनुभूति कहीं नहीं है, क्योंकि प्रेम उन्हें रिक्त नहीं करता, समृद्ध करता चलता है। इसी समृद्धि का अनंत प्रसार वह संपूर्ण जीवन और जगत में देखते हैं। यहीं से वरदान और आशीष की अभ्यर्थना शुरू होती है। यहीं से वह अपने अलक्ष्य रस स्रोत से सारी प्रकृति, सारे जीवन और जगत को अप्लावित करके स्वयं निष्काम हो जाते हैं। आह्लाद से निष्कामता तक की यही यात्रा उन्हें अंततः आत्ममुक्त करती है। यह आत्ममुक्ति ही निराला के प्रेम गीतों का सूक्ष्म भाव संवेदन है। यहीं आकर निराला साधारण और रोमांटिक गीतकारों से अलग हो जाते हैं। यहीं आकर वह मध्यकालीन गीतकारों से भी पृथक और सर्वथा स्वतंत्रता और मौलिक गीतकार के आसन पर बैठते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह प्रेम को अशरीरी न मानते हुए भी उसकी संपूर्ण अनुभव प्रक्रिया से गुजरकर उससे संतों से भी अलग एक दूसरे कोटि की अशरीरी अनुभूति प्राप्त करते हैं। वह उसे माया और दिग्भ्रमित करने वाला सांसारिक आकर्षण मात्र मानकर उसे त्याज नहीं समझते, बल्कि उसमें डूबकर उसकी उच्छल पवित्रता की गरिमामयता को संकेतित करते हैं। इसलिए निराला के प्रेम गीतों को न तो स्वच्छंद रोमांटिक गीतकारों के गीतों की कोट में रखा जा सकता है, ना ही संतों के प्रेम के सचराचर प्रसार की अशरीरी अभिव्यक्ति के अंतर्गत। इन दोनों से ही अलग उनके गीत उनके निजी जीवन बिंब के पृष्ठ संख्या 34 संगोपन चित्र हैं। उन्होंने अपने से अपनी कविता को कभी भी अलगाया नहीं, इसीलिए आह्लाद से मौन आत्ममुक्ति तक की उनके प्रेम गीतों की इस यात्रा को उनकी मौलिक संवेदना की खोज मानना ही अधिक उचित होगा। इस मौलिक सृजना की पृष्ठभूमि में निराला की प्रेम संबंधी निजी और महत्वपूर्ण धारणा है। प्रेम उनके लिए वह महान तत्व है जो उन्हें भार युक्त ना करके भार मुक्त करता है, उन्हें पूर्ण बनाता है। व्यक्तित्व के भीतर जो खोखले अंधेरे कोटर हैं उन्हें भरता है और आलोक फैलाता है। पूर्णता की अनुभूति ही उनके प्रेम गीतों में बार बार अभिव्यक्त हुई है। प्रेम के इसी प्रभावशाली रूप का उद्घाटन अनामिका की प्रेयसी नामक पहली ही कविता से शुरू होता है। अष्टम एडवर्ड में इसी प्रेम का बखान और उसकी सर्वांत महत्ता की स्थापना निराला ने की है। इस संबंध में निराला किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक बाधा को महत्वहीन मानते हैं। प्रेयसी में यदि उन्होंने सामाजिक बाधाओं और संकीर्णताओं को ताक पर रखते हुए प्रेम को उसके पारंपरिक विचार से मुक्त किया है, तो उसी की ऐतिहासिक धरातल पर वह अष्टम एडवर्ड के चरित्रोद्घाटन द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से मुक्त करते दिखाई देते हैं। दरअसल निराला प्रेम को मनुष्य के जीवन में एक अभूतपूर्व वरदाई अनुभूति मानते हैं और उसकी शरीरी महत्ता को अशरीरी पवन अनुभूति की उपलब्धि तक ले जाते हैं। संभव है इस रूप में निराला के इन प्रेम गीतों में हल्की सी पारंपरिक झनकार की अनगूज भी किसी किसी को सुनाई पड़े, लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व उस झनकार को सोख कर एक नई और सर्वथा मौलिक लयात्मक गूंज पैदा करता है। शरीरी महत्ता में प्रेम की प्रखर अनुभूति की पहली प्रतिक्रिया उनके मन में आह्लाद की होती है। इस आह्लाद को उन्होंने बार बार अनेक बिंब छवियों में आंकने की कोशिश की है। एक बैठ ले कुछ देर आओ, एक पथ के पथिक से प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मूकता की आड़ में, मन सहजता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। दो जैसे हम हैं वैसे ही रहें, लिए हाथ एक दूसरे का अतिशय सुख के सागर में बहें, मुंदे पलक केवल देखें उर्मे। पृष्ठ संख्या 35 सुने सब कथा परिमल सुर में, जो चाहे कहें वह कहें। वहाँ एक दृष्टि से अशेष प्रणय देख रहा है जग को निर्भय, दोनों उसकी दृढ़ लहरें सहें। यह आह्लाद किसी मूढ़ का आह्लाद नहीं है, यह स्थितियों की क्षण संवेदना से नहीं पैदा हुआ है, जैसा कि रोमांटिक कहते हैं, या जिसकी कुछ दिनों तक बहुत कसकर अज्ञेय ने वकालत की थी। निराला का यह आह्लाद अतीत और भविष्य को झुठलाता हुआ, उससे पूर्णतया कटा हुआ तथाकथित पूर्ण वर्तमान में स्थित आह्लाद नहीं है। इन्हीं अर्थों में मैं कहता हूँ कि निराला छड़वादी और रोमांटिक नहीं है। उनका यह आह्लाद अपने पूर्व अतीत और आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन दोनों से अपने वर्तमान को जोड़कर ही निराला प्रेम द्वारा व्यक्तित्व की पूर्णता का संदेश देते हैं। वह प्रेम का मौन आह्लाद अतीत और भविष्य की अंधेरी जगहों को घेर कर बैठा हुआ है। उस अंधेरे से पलायन नहीं है, उसे घेर कर वश में रखना है। भाषा के मौन से उसकी शल्य चिकित्सा करनी है, जिससे उत्थान और पतन की रोग जर्जरता से मुक्ति मिले। यही उसका उद्देश्य है, क्योंकि यह उत्थान और पतन का निरंतर आघात भय पैदा करता है। मनुष्य की आंतरिक आस्था और पावनता को खंडित करता है। सिर्फ प्रेम ही वह तत्व है जिससे निर्द्वंद और निर्भय स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। निराला उसी अशेष प्रणय को सारी सृष्टि में रमा हुआ देखते हैं। उसकी लहरें अप्लावनकारी होती हैं, उसकी पवित्रता और तेजस्विता को सहना आसान नहीं है। निराला यह आह्वान करते हैं कि आओ हम उसकी अप्लावनकारी लहरों का निरंतर आघात सहें और अपने भय, द्वंद्व और अंधेरे को पवित्र करें। भय और द्वंद्व से मुक्ति का अनंत स्रोत यही प्रेम है। इसी पावनता और मुक्ति के आह्लाद से उल्लसित वे प्रेम के लिए संसार की कोई भी वस्तु त्यागने को तैयार हैं। उन्हें जो चाहे कहें वह कहें कि चिंता नहीं। कोई उन्हें मंद कहता है, उनके काव्य अनुमान को छोटा बताता है, उनकी प्रतिभा को बौना करार देता है। उन्हें इसकी चिंता नहीं, क्योंकि प्रेरणा और प्रतिभा का अजस्र स्रोत तो उनके अपने भीतर वर्तमान है। सांसारिक विश्वचन और दुखांत सबके ऊपर यह प्रेम उनके व्यक्तिगत और काव्य ऊर्जा को विघटित होने से बचाता है। उन्हें वह सुरक्षा देता है, वह समझ देता है जो बाहरी संसार में उन्हें निरंतर अनुपलब्ध रही है। वही उनके काव्य मर्म को विखंडित होने से बचाता है, उन्हें पूर्ण करता है। पृष्ठ संख्या 36। कुछ ना हुआ डॉट डॉट ना हो मुझे विश्व का सुख श्री, यदि केवल पास तुम रहो। मेरे नभ के बादल यदि ना कटे, चंद्र रह गया ढका, तिमिर रात को तिर कर यदि ना अटे, लेश गगन भास का रहेंगे अधर हंसते, पथ पर तुम हाथ यदि गहो। बहुरस साहित्य विपुल यदि ना पढ़ा, मंद सबों ने कहा, मेरा काव्य अनुमान यदि ना बढ़ा, ज्ञान जहाँ का रहा रहे समझ है मुझ में पूरी, तुम कथा यदि कहो। इसमें भी वही अंधेरा है, वही तम गहन जीवन, यहाँ अंधेरे में डूबा आकाश है, आकार ही निष्पंद अदृश्य और डरावना। लेकिन उससे पलायन नहीं है, बल्कि उसका सहज उदास स्वीकार है। ज्ञान काव्य अनुमान बहुरस विपुल साहित्य, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी अर्जित नहीं किया, कोई अंतर नहीं पड़ता। यह कथाकथित रिक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यह बहुत ऊपरी है। रस ऊर्जा रचनात्मकता और वाग्मिता का अतल स्रोत तो अंतर है, वह कहीं से भी रिक्त नहीं रहने देगा। प्रेम की महत्ता से उपजा हुआ यही आत्मविश्वास इस गीत में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ आह्लाद की अनुभूति में हल्की सी उदासी हर जगह मिली हुई है। यह उदासी ही उस आह्लाद के अनुभव को और तीखा और गहरा बना देती है। प्रेम के संबंध में जायसी या कबीर की इससे मिलती जुलती उक्तियाँ सिर्फ ऊपरी ही साम्य रखती हैं। कबीर जब ढाई आखर प्रेम का बखान करते हैं, तो उनकी उक्ति पूर्णतया उपदेशात्मक हो जाती है। जायसी के प्रेम का बखान एक तरह का दार्शनिक रूपक खड़ा करता है। रविंद्रनाथ भी कहीं ना कहीं प्रेम का एक दार्शनिक रूपक खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। रात्रे ओ प्रभाते में सौंदर्य और प्रेम का उच्छल मांसल अनुभूति को देवत्व की पवित्रता तक ले जाने का जो प्रयत्न रविंद्रनाथ ने किया है, उसमें अपने चाकचक्य के भाव से वह फिर उसी दार्शनिक रूपक की ओर सारी कविता को मोड़ ले जाना चाहते हैं। निराला ने भी इस कविता का शीर्षक उक्ति ही दिया है, लेकिन ना तो कबीर के ढाई अखर प्रेम की तरह यह कविता उपदेश बनती है, न जायसी की तरह इसके द्वारा प्रेम का कोई सर्वांत व्यापक। पृष्ठ संख्या 37। दार्शनिक रूपक खड़ा होता है, और ना ही रविंद्रनाथ की तरह निराला में कहीं कोई चाकचक्य के भाव है। प्रेयसी से देवी तक की स्त्री की इस यात्रा में रविंद्रनाथ जिस तरह का आश्चर्य अपनी कविता में व्यक्त करते हैं, उसमें उसी आदि रहस्यमकता का संकेत झलकता है। निराला की इस तरह की पंक्तियाँ भी किसी तरह की रहस्य अनुभूति की सृष्टि नहीं करती, एक वासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी। दो, ज्ञान तंतु तुम जग अजान मन शव शिव शक्ति महान। इन उक्तियों में भी निराला प्रेम की अपनी धारणा को दार्शनिक या रहस्य रूपक में नहीं खींचते। हालांकि इस पंक्तियों के शब्द बंध और उसकी बिंब योजना से यह भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन तथ्य इसके विपरीत है। जहाँ जायसी और रविंद्रनाथ नितांत लौकिक बिंबों को दार्शनिक रूपक का संकेत देने के लिए काम में लाते हैं, वही निराला रहस्यात्मक और दार्शनिक बिंबजालों से निजत्व की सीधी सादी अभिव्यक्ति का काम निकालते हैं। रूखी री यह डाल के आशुतोष फल और अस्मर हर कुवरने में भी कविता का उद्देश्य प्रेम के गहरे सांद्र प्रतिफलन की अभिव्यक्ति ही है। इसी तरह उसे ज्ञान तंतु या अजान मन शव की शिव शक्ति कहना भी उसकी दार्शनिक व्यंजना के प्रति प्रतिश्रुति नहीं है। इन अभिप्रायों से निराला अपनी आत्म अभिव्यंजना और सहज आत्म स्वीकृति का ही काम निकालते हैं। इसीलिए प्रेम की यह उक्ति कबीर का उपदेश नहीं बन जाती। कबीर अपनी उक्तियों को अपने निजत्व से जोड़ते नहीं, एक प्रवचनकर्ता की हैसियत से प्रेम के संबंध में अनुभव और चिंतन का एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कबीर की उक्ति अपने लिए उतनी नहीं है जितनी दूसरों के लिए। उनकी साखी उद्धत करते वक्त कवि तुरोहित हो जाते हैं, उनका दिया हुआ सूत्र वाक्य रह जाता है। निराला की उक्ति कहीं से भी दूसरों के लिए नहीं है, वह सीधी निजी साक्षात्कार, नरम कोमल उदास लेकिन पूर्णता प्रदान करने वाला। यहाँ पर कविता से निराला कभी तिरोहित नहीं होते, बल्कि वे अपनी निजता की गहरी अनुभूति को चुपचाप हमारे भीतर प्रतिरोपित करते हैं। उनके निजी क्षण हमारे निजी क्षण बन जाते हैं। इन विषयगत विशेषताओं के साथ इस गीत की भाषिक संरचना भी अत्यंत सरल, सहज और प्रत्यक्ष है। उसकी व्यंजकता में दूर के संकेत नहीं हैं। संश्लिष्टता, जो निराला के गीतों की एक मुख्य विशेषता है, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। स्थितियाँ साफ और द्वंद्व रहित हैं, अपने अतीत के दुखांतों का सहज स्वीकार है। पृष्ठ संख्या 38, सारे कथन में एक सुखद मंथरता है, भागम भाग नहीं है, अर्थ चमत्कार नहीं है। यह मंथरता कविता की संपूर्ण भाषिकता में अंतर्गुम्फित है। पढ़ते वक्त टेक की पंक्तियों, टुकों और अंतरे की छोटी पंक्तियों को एक एक शब्द पर रुकना पड़ता है, तभी तथ्य का मंथर सौंदर्य उद्घाटित होता है। कुछ ना हुआ ना हो पूर्वविराम, मुझे विश्व का सुख स्त्री कौमा, यदि केवल पास तुम रहो पूर्वविराम, मेरे नभ के बादल यदि ना कटें कौमा, चंद्र रह गया ढका कौमा, तिमिर रात को तिर कर यदि ना अटे कौमा, लेश गगन भास स क कौमा, रहेंगे अधर हंसते कौमा, पथ पर तुम कौमा, हाथ यदि गहो आदि। पाठ प्रवाह के अंदर इस तरह की मंथरता, कथ्य की दुविधाहीन निश्चिंतता, आत्मस्थता और निसंशय मन की अभिव्यक्ति देती है। निराला की कविताओं में यह शिल्पगत सुघड़ता जगह जगह प्राप्त होती है, जहाँ कथ्य शब्द बंध के लय प्रवाह से अधिक व्यक्त होता है, शब्दार्थ से कम। इस गीत में लय की यह मंथरता ही कवि की दुविधाहीन आत्मअस्थता को व्यक्त कर देती है। उसी दुविधाहीन निसंशय मना स्थिति को निराला ने अपने संग्रहों के अनेक गीतों में अभिव्यक्त किया है। सुख का दिन डूबे डूब जाए, तुमसे न सहज मन उब जाए, खुल जाए न मिली गांठ मन की, लुट जाए न उठी राशि धन की, धुल जाए न आन शुभानन की, सारा जग रूठे रूठ जाए, उलटी गत सीधी हो न भले, प्रति जन की दाल गले न गले, टाले न बात यह कभी टले, यह जान जाए तो खूब जाए। वही मंथर आह्लाद की अनुभूति यहाँ भी व्यक्त हुई है, वही तम गहन जीवन, वही अंधेरा आकाश यहाँ उल्टी गति के शब्द बंध में व्यक्त हुआ है। जो चाहे कहें वह कहें, यहाँ सारा जग रूठे रूठ जाए में ध्वनित है। वही प्रतिज्ञा बद्धता, वही निश्चल आत्मत्याग, वही पूर्णता की अनुभूति, वही निरामयता और बेलागपन। इसीलिए मैंने कहा कि निराला के गीत अलग अलग कविताएं नहीं हैं, खंड अनुभूतियां नहीं हैं। उनमें एक सहज एक तनता हर जगह विद्यमान है। वह उनके पृष्ठ संख्या 39 अखंड अंता संगीत के वक्राकार स्वरारोह हैं, जिनकी निरंतरता कहीं भी टूटती नहीं है। प्रेम को व्यक्तित्व की पूर्णता का पर्याय मानने के पीछे निराला के निजी जीवन के दुखांत ही हैं। अपनी आत्मजर्जरता के इन्हीं क्षणों को भरने के लिए वह उसका आवाहन करते हैं। अपनी प्रतिभा तेजस्विता को समृद्ध करने वाले स्रोत की तरह उसकी ओर उन्मुख होते हैं। इसलिए आह्लाद से लगातार आत्ममुक्ति तक की इस अंतरयात्रा के संगीत के पीछे अपने निजी दुखांतों की तीखी अनुभूति उनके गीतों में हर जगह परिव्याप्त है। शायद दुखांत की इसी तीखी अनुभूति की पृष्ठभूमि पर रचे जाने के कारण उनका यह निरामय आत्मतोष, उनकी उच्छल पावनता और निष्कामता की अभिव्यक्ति दोहरी सशक्तता ग्रहण करती है, क्योंकि यहाँ प्रेम एक दुखी आदमी का पाया हुआ रतन है। रविंद्रनाथ की तरह सारी सुविधाओं के बीच एक और अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि ना कुछ होने की स्वीकृत स्थिति में पूर्णता का प्रतिभास है, ना कुछ की इसी तीखी अनुभूति पर उनके लगभग सभी प्रेम गीतों की रचना हुई है। एक हंसो अधर धरी हंसी, बसो प्राण प्राण बसी, करुणा के रस उर्वर कर दो ऊसर ऊसर, दुख की संध्या धूसर हीरक तारकों कसी। दो मेरा दुख अरण्य किसलय दल ज्वाल, जली काली कोयल तुम दैन्य डाल पर बैठी प्रतिपल, सुना रही हो तान। इसी ऊसर ऊसर की भूमिका पर रस का उर्वर स्रोत कवि मांगता है। इसी दुख अरण्य में कोयल की काकली सुनकर अंततः आश्वस्त होता है। वही तम गहन जीवन यहाँ दुख की धूसर संध्या में अभिव्यक्त हुआ है। दुखांत की यही तीखी अनुभूति उनके प्रेम गीतों की रचना पृष्ठभूमि है। इसी दुखते जले अरण्य में ऊसर के सर्वांत प्रसार में वह अतल स्रोत फूट कर उसे रस प्लावित करता है। इसी का प्रतिफलन उसकी अगाध ऊर्जस्वित काव्य रचना है, जिसके बारे में कवि कहता है। पृष्ठ संख्या 40। तेरे सहज रूप में रंग कर झरे गान के मेरे निर्झर, भले अखिल सर स्वर से मेरे सिक्त हुआ संसार। यह उस आत्मतोष और आस्था की अंतिम परिणति है। ऊसर ऊसर में बरसता हुआ, उसे समृद्ध करता हुआ वह अतल स्रोत ही गीतों के निर्झर का रूप ग्रहण करता है। उस दुख अरण्य में गाती हुई जली हुई कोयल के स्वर से सारा संसार अंततः नहा उठता है। मन का दैन्य आत्मजर्जरता अंततः अपने समृद्धतम रूप में प्रतिफलित होती है। अपने निजी जीवन के लिए अक्सर निराला ने जंगल वृक्ष और पहाड़ का बिंब लिया है। उनकी सात्वलता कठोरता उनका अगम अंधकार, ये सब कुछ निराला के अपने जीवन के प्रतिरूप लगते हैं। इसीलिए जगह जगह इन बिंबों को वह कविता में उभारते हैं, कभी ठूंठ कभी झूमता हुआ हरा भरापन, कभी जीवन वन सावन, कभी पतझर का सा वन उपवन, कभी नर अगर तू बन पहाड़ के रूप में हर जगह हुए अपनी तेजस्विता और व्यक्तित्व की गहनता तथा अपराजेयता की अनुभूति वहाँ पाते हैं। इसी तरह निराला ने शा ळ ल वा की जगह जिस दंत सा की तारीख की है और उसके संदर्भ में जयदेव तथा तुलसीदास को वह उद्धृत करते हुए उसे हिंदी की प्रकृति बतलाते हैं। उसका सुघड़तम रूप बंध हंसो अधर धरी हंसी वाले बंध में देखने को मिलता है। दंत सा के प्रयोग का इतना गहन सौंदर्य शायद ही हिंदी कविता में कहीं दूसरी जगह मिले। हंसो हंसी रस ऊसर ऊसर संध्या धूसर कसी पूरे बंद के अधिकांश शब्द दंत सा के इस उदास सौंदर्य से कविता को उद्भासित करते हैं। शब्दों की इस चमक में एक शांत उदास मटमैला पीलापन उभरता है जो पूरी कविता के अर्थ सौंदर्य को उसकी प्रार्थना को उसकी आशावंतता को अपने उस मटमैलेपन से मढ़ देता है। जो दृश्य बिंब कवि ने अधर धरी हंसी में खड़ा किया है उसे प्रकृति में प्रतिरोपित करके हीरक तारकों कसी में ले जाकर वह पूरा करता है। होठों पर रखी हुई हंसी के फूटने फूटने में धवल दंत पंक्तियों की चमक का जो आभास है उसे धूसर संध्या के बीच एकाएक हीरे की तरह फूटते सितारों से कवि से मिलाया है। इस तरह एक चित्र में दूसरे चित्र का सौंदर्य फूटता है। एक बिंब दूसरे बिंब को दिए की तरह लौ पकड़ाता है और सहसा बीच के बिंब की धूसरता चमक उठती है। लेकिन निराला के प्रेम गीतों में चित्रित आह्लाद स्वयं अपने में पूर्ण नहीं है, वह तो संपूर्ण क्रम में एक सीढ़ी है। इसी आह्लाद और तन्मयता से होकर निराला प्रेम पृष्ठ संख्या 41 के गहरे अनुभूत सुख के चित्रण में उतरते हैं। इस तरह के चित्रण मुझे पारंपरिक उतने नहीं लगे, बल्कि इस तरह के गीत पढ़ते हुए मुझे हेनरी मिलर के उपन्यास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कुछ स्थलों की याद आई। यद्यपि ट्रॉपिक में बहुत कुछ ऐसा है जिस ढंग से निराला का दिमाग सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अनुभूत सुख का जो चित्रण हेनरी मिलर ने किया है बावजूद अपनी सारी नग्नता के, वह मन का कोई अश्लील प्रभाव नहीं छोड़ता। इसी को मिलर ने दूसरे बाइबिल की संज्ञा दी है। निराला और मिलर में अंतर यही है कि मिलर उस आत्मतोष की उपलब्धि मानसिक तनावहीनता तथा शारीरिक विश्रांति तक मानते हैं, जबकि निराला उसमें एक अजीब सी पवित्रता और निष्कामता की अनुभूति से अपने को मुक्त महसूस करते हैं। मानसिक तनावहीनता एक प्रकार की दैहिक प्रतिक्रिया ही है कुल मिलाकर, जबकि आत्ममुक्ति उससे पाया हुआ एक नैतिक मूल्य है। मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह की कविताएं एक ही एकतान अनुभूति के प्रतिफलन हैं। ऊपर के कुछ उदाहरणों में हमने आह्लाद चित्रण का रूप देखा है। यहाँ एक कविता में उस अपूर्व सुख जिसे देह सुख कहकर अक्सर यहाँ तिरस्कृत किया गया है कि पूर्व तैयारी का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। मूंद पलक प्रिय की शैया पर रखते ही पग उर धर 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 कांप उठा वन में तरु मरमर चली पवन पहली। यहाँ पग रखने के बाद का सारा व्यापार सिर्फ संकेतित है। निराला ने उसके बाद आधी रात की पहली हवा में कांपते हुए पेड़ का चित्रण करके सारी बात संकेत में कह दी, लेकिन यह संकेतिकता किसी मानसिक संकोच की उपज नहीं है, वह पूरी कविता के शिल्प और उसके सौंदर्य पक्ष की मांग है। कविता के पहले दो बंदों में प्रेम पात्र के मानसिक उल्लास और भोलेपन की छवि को कवि ने उकेरा है। उस भोली भाली छवि के संयोग की परिकल्पना निराला शब्द चित्रों से ना करके एक प्रकृति बिंब में उसे प्रतिरूपित कर देते हैं। उन्होंने ऊपर के बंदों में जिस लज्जा की चर्चा की है उसकी रक्षा हुए इसी सांकेतिकता से इस गीत में करते हैं। अतः यह संकोचवश अभिव्यक्ति को टाल जाने का प्रतिफल न होकर शिल्प की मांग से उपजी हुई सांकेतिकता है। जहाँ शिल्प उनसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति की मांग करता है, वहाँ वह जरा भी संकोच नहीं करते। जूही की कली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। निपट निठुराई से सारी देह झकोर डालने और गोरे कपोल मसलने का अत्यंत खुला और बेलाग चित्रण निराला ने जूही की कली में किया है। इसके उदाहरण स्वरूप दूसरे और कई गीत लिए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 42। स्पर्श से लाज गई अलक पलक में छिपी छलक उरसे नौ राग जगी। चुंबन चकित चतुर दिक चंचल हेर फेर मुख कर बहु सुख छल कभी हास फिर त्रास सांस बल उर सरिता उमगी। प्रेम चयन से उठा नयन नौ विधु चितवन मन में मधु कल रो मौन पान करती अधरा सो कंठ लगी उरगी। मधुर स्नेह के मेह प्रखर तर बरस गए रस निर्झर झर झर उगा अमर अंकुर उर भीतर संस्रति भीति फगी। यह गीत संभोग का अत्यंत सघन और सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करता है। इतने कम शब्दों में ऐसा भरपूर चित्र रविंद्रनाथ में भी देखने को नहीं मिलता। हर शब्द संभोग सुख के पूरे कार्य व्यापार को तह दर तह खोलता है। उसका मनोवैज्ञानिक विकास सूक्ष्मतम ढंग से इस कविता में लक्षित किया जा सकता है। प्रथम स्पर्श से धीरे धीरे वह नवराग जन्म लेता है। आह्लाद के इस प्रथम सोपान से आगे बढ़कर कविता असीम तन्मयता और तीव्र व्याकुलता की मना स्थिति में प्रवेश करती है। कवि उसे सुख छल कहता है। छले जाने में तीव्र से तीव्रतर होता हुआ उल्लास व्यंजित है। फिर उसकी तह दर तह पंखुड़ियों को कभी उघाड़ता है, कभी हास, फिर त्रास, सांस बल, कुंचों के उठने गिरने के लिए सांस लेती उमड़ती हुई नदी का बिंब निराला ने प्रयुक्त किया है। फिर उस संपूर्णता का वर्णन है, उस मदहोशी का, जहाँ पर त्रास हास सब समाप्त हो गए हैं। शांत मौन भाव से अर्ध बेहोशी में वह कंठ से लगी हुई अधरा सौ पान कर रही है। निराला ने यहाँ उसे उरगी कहा है। इसमें स्त्री के तीखे बेहोश कर देने वाले वासना जहर का संकेत है। वह विष जो हमारी सारी चेतना को थोड़ी देर के लिए कुंठित कर देता है, मार देता है। लेकिन निराला यहीं पर इसी तनावहीनता या शारीरिक और मानसिक विश्रांति तक ले जाकर इस सारे पृष्ठ संख्या 43 चित्र को छोड़ नहीं देते। उनके लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण निष्कामता और आत्ममुक्ति का वह नैतिक मूल्य है जो इस सारी प्रक्रिया से होकर उन्हें मिलता है। इसका अंत अमर प्रेम का अंकुर उगने में होता है, जहाँ पहुँचकर इस जीवन और संसार के सारे दुखांत सारे भय भाग जाते हैं, व्यर्थ नगण्य और महत्वहीन हो जाते हैं। यही वह व्यक्तित्व की पूर्णता है, वह आत्ममुक्ति है, जहाँ प्रेम की इस सारी प्रक्रिया से होकर निराला पहुँचते हैं। यही उनकी भारतीयता और मौलिकता दोनों ही है। इसी को कहीं वह तृप्ति प्रेम सर कहकर परिभाषित करते हैं। इसी पूर्णता की प्रभाव को वह बार बार अपने गीतों में मुग्धत्व की अलग अलग छवियों में अंकित करते हैं। कभी जूही की कली के रूप में, कभी शेफालिका के वेश में। इसी को कभी वह जब तू रचना में हंस दी पल्लो डोले चिड़ियां चहकी कहकर उसके अनंत असीम प्रभाव सुख को अंकित करते हैं। इसी को कभी तन की मन की धन की हो तुम कहते हैं, कभी रंग भरी किस अंग भरी हो कहकर नारी के भरे पूरे सौंदर्य पर अपनी स्नेहित पावन मुग्धता प्रकट करते हैं। लेकिन वह चाहे किसी भी कोण से गीत को क्यों न उठाए, उसका अंत उसी पावन निष्कामता और आत्म मुक्ति में होता है। एक नहीं लाज भय अंद्रित अनय दुख लहराता उर मधुर प्रणय सुख अनायास ही ज्योतिर्मय मुख स्नेह पाश कसना। दो चमका हीरक हार हृदय का पाया अमर प्रसाद प्रणय का, मिला तत्व निर्मल परिणय का, लौटे स्नेह भरी। 3 गहरे गया तुम्हें तब पाया, रही अन्यथा कायिक छाया, सत्य भास की केवल माया, मेरे श्रवण वचन की हो तुम। 4 दूर हुआ कलुष भेद, कंटक निष्पंद छेद, खुले स्वर्ग दिव्य वेद, माया हो गई भली। पृष्ठ संख्या 44। 5 रहकर मेरे दबते मन, फटे सौ सौ मधु गुंजन, तलकी छबियां नत लोचन, उमड़ी मानस लहराया। ऊपर की पांचों उदाहरण गीतों के अंतिम बंध हैं। इन सभी उदाहरणों से मुक्ति और आत्मतोष की वही भावना व्यक्त हुई है जिसका जिक्र ऊपर हम कर आए हैं। चाहे वह ज्ञान तंतु के रूप में व्यक्त हुआ हो, चाहे प्रेम के अमर अंकुर के रूप में, चाहे धागे में पिरोई त्याग की मुक्ता के रूप में, उसका उद्देश्य प्रेम की सारी गहनतम प्रक्रिया से गुजरकर उसी आत्ममुक्ति को प्राप्त करना है। यह विशद अमर प्रेम स्वयं ही मुक्त है, पूर्ण है, अनायास है। उसे किसी लज्जा, भय या असत्य अथवा संताप की चिंता नहीं है। वह जब मिलता है तो पूर्ण कर देता है। उस स्नेह पाश में कसे जाने पर सब कुछ अनायास ही ज्योतिर्मय हो जाता है। कहीं अंधेरे अज्ञात के खाली कोटर नहीं रह जाते। वह एक अमर प्रसाद है, निर्मल तत्व है, जिसके मिलते ही सारा मानव व्यक्तित्व प्रोद्भासित हो उठता है। सारे कलुष भेद ईर्ष्या अहंकार अपूर्णताएं रिक्तियां मिट जाती हैं। जीवन में नया ज्ञान, नया अध्याय प्रकाशवंत होकर खुलता है। माया की शुभ में बदल जाती है। दबे हुए मन में सौ सौ वसंत फूट पड़ते हैं।